কিন্তু অসৎ লক্ষণহীন। যদি অসৎ লক্ষণ মানে ক্যা মায়াবাদী না হো আর এসা না হো তো দীক্ষা নই ভি হুই হ্যা তো ইয়ে বৈষ্ণব হোগা, ইসলিয়ে উসকো মন হি মন মে আদর। কিন্তু প্রভুপাদ নে কহা দীক্ষাস্ত চেত, দীক্ষা যদি হো গই হো সম্বন্ধ জ্ঞান হো তো উসে মন হি মন আদর করো আর দণ্ডত প্রণাম ভি করো, দোনো। দণ্ডত প্রণাম করনে কে অপেক্ষা মন সে যো প্রণাম কিয়া জাতা হ্যায় ইসকা মহত্ব কুছ অধিক হোতা হ্যায় মন সে। উপর সে ইচ্ছা নেই হ্যায় কিসি কে প্রতি শ্রদ্ধা নেই তো দণ্ডত প্রভু কর দি, ইসকা কোই অধিক মূল্য নেই হ্যায়, ইসলিয়ে মন হি মন মে প্রণাম করো। কিন্তু দীক্ষা জিসকি নেই হুই হো, অসত লক্ষণহীন নেই হুয়া হ্যায়, উসকো সাক্ষাৎ প্রণাম করনে সে কুছ অসুবিধা হ্যায়। এক গধে কো তিলক কর দিয়া আর গলে মে তুলসী কি মালা পহনা দিয়া, সাধারণ লোক উসকো দণ্ডত প্রণাম করেঙ্গে, কিন্তু বৈষ্ণব লোক বিচার করকে করেঙ্গে। ইলে জোহি গধে জ্যাসা ব্যক্তি ভোগী কামী ও তো দীক্ষা লেনে পর ভি উপেক্ষণীয় হ্যায়, উসকি দীক্ষা দীক্ষা নেই হ্যায়, যথার্থ মে উসকি দীক্ষা হোনি চাহিয়ে, সম্বন্ধ জ্ঞান হোনে চাহিয়ে, ফির এসা ও কর্মই নেই করেগা। আর জো দীক্ষা ইত্যাদি গ্রহণ করকে অনর্থ কো দূর কর অষ্টকালী লীলা সেবা মে মগ্ন হ্যায়, এসে লোক কো আপনা প্রাণ বন্ধু সমঝ কর উনকি সেবা করনি চাহিয়ে, উনকি বাতো কো শুননা চাহিয়ে, ইয়ে ইসকা সার। ইসকে বাদ মে দৃষ্টি স্বভাব জানি তৈরি বকো তুম বল তোমারা।
Translation will be what you spoke.
No need, because he has told. Okay. He has told more better than me.
অপবিত্র নেই হতি হ্যাঁ, গঙ্গা হমেশা হি শুদ্ধ হ্যাঁ, इसी प्रकार वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र जय निंदे हिंसा करी भगते विनोद ना संभासे तारे थाके सदा मौन भरी। वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र, इसलिए वैष्णवों के चरित्र को समझना बड़ा कठिन होता है। न जाने कौन से मूड में, कौन से भाव में, कौन से विचार में है, और बाहरी आचरण को देख करके जहाँ हम उसको चर्चा के विषय में लेते हैं तहाँ हमारा हृदय स्वयं स्वतः ही मलिन हो जाता है और हम मलिनता को प्राप्त होते हैं। इसलिए वैष्णवों का कदापि दोष नहीं देखना है। दूसरी बात, अभी अभी जैसे एक बात याद आई थी कि बहुत से ऐसे प्रश्न आया करते हैं, जैसे शुरू से ही वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम आदि आदि श्लोक पर विवेचन हुआ है। मेरा एक कहना है कि इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, देखते हैं कैसे हम अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और श्री चैतन्य चरितामृत ने कहा है काम कृष्ण कर्मार बने, क्रोध भक्त देसी जने, लोग साधु संगे हरी कथा, काम क्रोध लोभ मोह आदि को किस रूप में हम मोड़ सकते। बोले क्या इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है? सभी लोगों ने तो ऐसे ही बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो क्या इसको समाप्त नहीं कर सकते? बोले कदापि समाप्त नहीं होता, क्योंकि एक चीज देखा जाता है वेस्टर्न फिलोसॉफी, जिसको शेष कहते हैं साइंटिस्ट, जिसको शेष कहते हैं, और ईस्टर्न फिलोसॉफी उसी को कंसाइटनेस कहते हैं, जबकि वैष्णव दार्शनिक उसी को ही पूर्ण चेतन कहा है, और उस चेतनता का स्वभाव ही है इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति यदि नहीं होगा तो वो लेडी बन जाएगा, आलसी बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, न इधर में न उधर में। और उसमें फिर से कहा गया है कि यदि कॉन्शियसनेस आ जाता है, पूर्ण चेतनता आ जाती है, तो उसको बदलना होता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज भाषा में बात ने कहा है, लोग जैसे संसार मार्ग में, कर्म मार्ग में कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, बहुत बड़े बड़े कर्मी बन जाते हैं, इसी प्रकार कोई भक्ति जगत में भक्ति में बदल जाता है और भगवान के चरणों में लग जाता है, गुरु वैष्णवों की सेवा में वो जल्दी से जल्दी तीव्र प्रगति से पहुंचता है, आगे बढ़ जाता है। भागवत में क्या कहते हैं, तदा रजस तमो भाव काम लोभ लयस्त जी चेत एतैरनाविद्धं चित्तं सत्ये प्रसीदति, हृदय सत्गुण के द्वारा प्रसन्न होता है, रजगुण अष्टम गुण से काम क्रोध लोभ मोह मद विकार ये समस्त विकार उत्पन्न होते हैं। अतएव राशिक तामसिक भाव नहीं आ पावे, हमेशा सात्विक भाव बने रहे तब उससे चित्त प्रसन्न होगा। ये राशिक तामसिक भाव कैसे आता है, इसलिए वेदांत ने कहा है आहार शुद्ध सप्त शुद्धि, सप्त शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जबकि भोजन की शुद्धि होती है आहार विहार की, उससे हृदय शुद्ध होता है, सात्विक भाव आता है, और सात्विक भाव से धीरे धीरे निर्गुण भाव में शुद्ध भक्ति में प्रवेश होता है। तदा प्रसन्न एवं प्रसन्न चेतसु, जिस समय चित्त प्रसन्न होगा उस समय भगवान की भक्ति होगी, नहीं तो हमेशा काम क्रोध लोभ मोह ये सभी भरा पड़ा हुआ है, शोक के द्वारा मोह के द्वारा ग्रस्त है, उनको भगवान की भक्ति नहीं होती है। शोक मरसाद विभाव रात काम तजस्व मानसम कथम तस्व मुकुंद स्फूर्ति संभावना भवित, श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं ईर्षा हिंसा देश कलह निंदा ये सब के द्वारा हृदय जब कलुषित है, हृदय जब अतृप्त है, तो भगवान की स्फूर्ति कहाँ से होगी? कोई भी स्मरण नहीं होगा, ना ही कोई स्फूर्ति होगी, और ना कोई भजन साधन हो पाएगा। इसलिए कहा है एवं प्रसन्न मन सो भगवत भक्ति जोगत, जब हृदय प्रसन्न होता है न किसी में निंदा में न वंदना में किसी में नहीं है, भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, तब उनको भक्ति रस सिद्ध होता है। प्रसन्न चेतस जास एवं प्रसन्न चेतस बुद्धि प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति जोगत, भगवान की भक्ति जो के द्वारा भगवत तत्व विज्ञान भगवान का तत्व दर्शन विज्ञान अनुभव अनुभूति उन्हें प्राप्त होता है। तत्व विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजाएते, तब विषयों से संसार से और सभी से अनासक्त हो जाता है। इसलिए इसमें इस प्रकार का वर्णन हुआ है। यही कथा के साथ में मैं अपना पुत्रवती रंका को कृपा
दृष्टि स्वभाव जनितर बहुशस्त्र। कोई वैष्णव स्वभाव से क्रोधी होता है किंतु क्रोध उसका किसी का अनिष्ट नहीं करता है। अभिराम ठाकुर अपनी चाबुक लगाते थे और प्रेम दे देते थे, यह स्वाभाविक चीज है। तो ऐसा स्वाभाविक क्रोध या बपु सदोष से आठों अंगों का टेढ़ा भी हो और सब बकरे से काला हो, वैष्णव दांत निकला हुआ हो, यह स्वाभाविक चीज है। कर्कश भाषिणी हो, कर्कश बोलता है, किंतु शुद्ध वैष्णव तत्व ज्ञान है तो उसका आदर हो। वो अप्राकृत चीजें हैं। दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध दिखता है उसको क्रोध मत समझो। नारद ऋषि का क्रोध, नारद ऋषि कभी किसी पर क्रोध देते थे। इसलिए वैष्णव का यह कर्कश बोली अथवा कुछ क्रोध युक्त बोली या बपु का देश हो, काला हो, कलुषा हो, टेढ़ा हो, सुंदर न हो, भाई अपराकृत समझो, उसका निरादर और अज्ञा मत करो। जैसे गंगा जल फेन और बुदबुद होने पर भी अपना अप्राकृतत्व जो गुण है वो नहीं छोड़ता, भक्ति देता है। उसमें स्नान करने से, उसका आचमन करने से, उनका दर्शन करने से, जमुना में भी ऐसे ही पंख भी है, फेन भी है, बुदबुद भी है, सब कुछ है। इसलिए इस पर विचार करके वैष्णवों का अनादर अवज्ञा न करो।
एक बार पद्मनाभ महाराज जी मथुरा में हमेशा गोली अटक जाते थे तो हम बच्चे से भी हंसते थे हर बातों में। जब उनका अंतिम समय हुआ तो इस समय आपने उनके छाती पर हाथ धरा और गुरु जी का नाम, राधा जी का नाम, महामंत्र सभी लेते हुए और फिर चरणा भी लेकर कितनी अच्छी रहती है, कितने भी कपट रहे।
नहीं करना चाहिए ऐसे। बहुत त्रिविक्रम महाराज जी कर्कश भाषी किंतु हृदय बड़ू कोमल नरम। उत्तम अधिकारी नो टीचिंग एंड कनिष्ठ अधिकारी नथिंग टू डू विथ दिस। ऑल दिस श्लोक्स आर फॉर मध्यम एंड गृहस्थ, नॉट फॉर त्यागी।
But they are saying Drishta, they are saying who? Uttam Vaishnav or?
All the Vaishnav.
Oh. Kanishta is like Ganges also.
Kanishta Vaishnav, we should, but it has been told. You do Mansik Pranam. तो यहाँ पर मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी के संबंध में कहा गया।
He's taking a bath.
Huh?
The Kanishka Adhikari is taking, he's like taking snan.
He
may not fully clean. So he's, if he stays in the bath, he will become clean.
At the end of the previous verse, Krishna Kiyasi
gave what meaning of bath?
He said that the common people, snan, if they don't keep
Hare Krishna, snan, snan,
then they will give pranam.
Bhagavan, pranam, snan. Bhagavan kanam snan.
This is so if you give pranam to a devotee, he was initiated.
So therefore, the Kanishka Adhikari is also pure.
If he's in the bath,
if he still keeps in the
bath, so Guru Goswami gave the injunction,
pure.
You should respect him in your mind.
I will use to come
only again. Only if you can't have a heart, only if you can't have a heart. Only if my body, but not in the heart. It's just that's for value. So my heart, you should respect those who are initiated with no Sampradaya. And those who have realized Sampradaya, one should respect my heart and my also. Now we're coming to the sixth verse, which comes to Bhagavad Janitana Vishastri Goshai. In essence, the verse describes that how should the Madhyam Adhikari see other devotees? There was also Madhyam and Uttam. That's what comes to because they are not really just the first time about. How should they see Vishnasa Bhagavad Janitana Vishastri Goshai? They may have two types of defects. Subhav dosh, defect in their nature, and Bahu dosh, defect in their body, such as some disease, or
black,
low caste,
blackness,
black,
ugly.
So, still, one should respect them and consider that they are transcendental in the same way that even though the Ganges may be polluted by some form, which part of the life described how Indra, he distributed his simple reaction to worship in a form, which were inauspicious. Yet they may be formed in the Ganges, but still the Ganges is always transcendental. So, should we have commented on this verse, he explained that sometimes a Vaishnava has so hard dosh, it seems that he has a defect in his character. What is that? He becomes angry. To become angry is very undesirable. But sometimes a Vaishnava becomes angry. But actually, the anger of the Vaishnava, this is, he is transcendental, his anger is also transcendental. For example, Abhiram Thakur used to have a whip, and sometimes he would hit people with it. But what was the result of him striking them? They would get Krishna trained. So also, the Rasa Rishi, he becomes angry and gives curses, but ultimately he gives a benefit. Narada Muni also, he gave curse to the sons of Kuvera, Anukuvera and Manigri, but by the curse of Narada they attained fame. So this is an example of Swabhava Dosh, an apparent defect in the nature or behavior. Another example of Swabhava Dosh is Karakash Bhashi, means sometimes the Vaishnava may speak very harsh words. So we're going to give an example of Pramudu Pad Chinatirika Maharaj.